राम राम हरे हरे
राम राम हरे
हरे कृष्ण प्रणाम भगवान श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुभद्रा राधा कृष्ण के चरणों में पंचतत्व की कृपा से कल युग में भागवत धर्म का संदेश गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा श्री प्रभुपाद ने साधारण मनुष्य के समझने की भाषा में प्रकाशित किया। सारे वैदिक साहित्य का सार भागवत धर्म का मूल ग्रंथ भागवत और उस भागवत के श्रवण वर्णन के लिए आप सब पधारे हैं, आपका स्वागत है और आज यहां मिलानो हाइट में सूरत में मुरलीधर काबरा जी के निवास स्थान पे जगदीश जी सोमानी और परिवार हमको ये सेवा का मौका दिया, इनका धन्यवाद करते हैं। भागवत का सुनना भगवान को दिल में स्थापित करना और भगवान की कृपा से हृदय के अंदर अनादि काल से जमे हुए मैल को धुल जाना, ये फल है। जो भागवत का फल है, भागवत के श्रवण का जो फल है, आज कल एक शब्द कहा था कुछ भक्तों ने उसको सार्थक समझा था कि हमारा भागवत सुनने की इच्छा भगवान श्री कृष्ण को आकर्षित करती है और भगवान जब आकर्षित करते हैं तो भगवान के बैठने का जगह हृदय है और सामान्य रूप से हमारे हृदय के अंदर बहुत सा कचरा होता है। कचरे का मतलब काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ऐसे जो कई जन्मों के संस्कार विकृत हैं, वो हमारे हृदय में भरे हुए होते हैं। जब भगवान हृदय में आते हैं, भागवत श्रद्धा से सुनने वाले के हृदय में प्रवेश करते हैं कानों के द्वारा, तो भगवान देखते हैं मेरा प्रेमी है, मेरी कथा सुनने आता है, लेकिन फिर भी दिल इसका इतना कचरे से भरा हुआ है। तो बड़ी भगवान करुणा करके दया करके उसका दिल साफ कर देते हैं झाड़ू निकालकर। भगवद गीता में तो भगवान कहते हैं तेषाम एवानुकंपार्थम, भगवद गीता में यही बात भगवान कहते हैं तेषाम एवानुकंपार्थम। मैं कांप जाता हूं, देखता हूं कि मेरा भक्त है, इसके दिल में अभी तक इतना कचरा पड़ा है, मैं कांप जाता हूं। अनुकंपा, उनके हृदय में जो अज्ञान है उसको मैं ज्ञान के प्रकाश के नाश कर देता हूं। ये भगवद गीता का श्लोक है और भागवत में ये श्लोक है धुनोति समलम कृष्ण, कृष्ण बैठ के सारा मैल धोएगा। तो हमारे भागवत श्रवण का उद्देश्य क्या होना चाहिए कि हमारे हृदय में भगवान प्रकट हो जाएं और जो भी हमारी अपनी कोशिश से, हमारे प्रयास से जो अंदर में अभद्र है जो अशुभ है वो भगवान कृपा करके धो के साफ कर दे। यहां भगवान माता का, जैसे मां करती है बच्चे को धो के साफ, ऐसे भगवान तुम्हें वो माता पहले कहते हैं ना रोज भगवान को, तुम्हें वो माता, तो ये जो माता का काम है वो भगवान करते हैं। मां बच्चे को साफ सुथरा करके धो के साफ करके फिर समाज को ऐसे देती है, अथवा पिता के हाथ में भी धो के फिर देती है। तो ये तुम्हें वो माता है, ये भगवान का पहला काम है कि हृदय के अंदर अनादि काल से जमे हुए मैल को धो के साफ कर देते हैं। और यही चेतना महाप्रभु के शब्दों में चेतो दर्पण मार्जन, भगवान श्री कृष्ण का सामूहिक रूप से बैठ के संकीर्तन करना, कथा कीर्तन करना, कथा संकीर्तन, भागवत का श्रवण भी संकीर्तन है। तो ये हृदय के जो एक जन्म के नहीं कई जन्मों के जो कलमश पड़े हैं, कलमश का मतलब कालापन, और यहां जो भागवत का पहला स्कंध हम पढ़ रहे हैं, इसके सुनने वाले पहले अध्याय के ऋषि हैं और सब प्रगतिशील आध्यात्मिक पथ के ऊंचे स्तर के महात्मा हैं और यज्ञ कर्म में लगे हुए हैं, फिर भी कहते हैं कि ये भगवत कथा जो है इसको सुनने से हम तृप्त नहीं होते हैं, यज्ञ करके थक जाते हैं, रोज सुबह उठते हैं सवेरे 4 बजे और फिर यज्ञ में लग जाते हैं और यज्ञ के काम करते करते शाम तक थक जाते हैं, लेकिन फिर भी कथा जब सुनने बैठते हैं तो हमारी थकान दूर हो जाती है, हमको और अच्छा लगने लगता है। ये अपना अनुभव बता रहे हैं। तो इसको जब हम पढ़ा तो हमको एक ही लग, सारा दिन आप काम करने जाते हैं, यज्ञ तो नहीं करने जाते हैं, लेकिन जो भी पेट की पूर्ति का भी यज्ञ होता है, भगवान पेट में वैश्वानर के रूप में बैठा है, कुछ अन्न डालना है खाने के लिए, तो ये भी यज्ञ होगा। जो सुबह से शाम तक हम बाहर जाते हैं काम करने कमाने, तो वो भी कमा के तो रोटी ही कमाते हैं, वो भी पेट में पड़े हुए वैश्वानर को यज्ञ के रूप में देनी है, थक भी जाते हैं, तो भी अगर भागवत कथा सुनने का नियम बना लेंगे तो वो थकावट सब दूर हो जाएगी। लेकिन ये भागवत श्रवण के लिए भागवत में 2 जगह पे ये लिखा है, और जगह पे भी होगा लेकिन 2 जगह पे बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है, नित्यम भागवत सेवया श्रणवताम श्रद्धया नित्यम। श्रद्धा से रोज श्रवण करना चाहिए और भागवत का सेवन रोज करना चाहिए, नित्य करना चाहिए। प्रभुपाद जी ने अपने शिक्षा के सिद्धांत में कहा सुबह भागवत का श्रवण करो, ये ब्रेकफास्ट है, जैसे स्पिरिचुअल ब्रेकफास्ट है, पराठा सुबह आलू का खा लो शरीर के लिए और भागवत सुन लो आत्मा के लिए, ये सुबह ब्रेकफास्ट, फिर भले सारा दिन काम करो, शाम को भगवत गीता का लंच कर लो। और रात को सोने के समय दूध के साथ कृष्ण परम पुरुष भगवान उसको रोज पढ़ने का नियम बना लो। प्रभुपाद ने कहा है लेकिन मेरे ख्याल में 99% नहीं कर पा रहे हैं। एक अध्याय भागवत के 10वें स्कंद का रात को पढ़ के सोना अपने आप को अच्छा हुआ, अच्छा दूध जैसे शरीर के लिए पौष्टिक है, केसर पिस्ता बादाम डाला हुआ दिलीप भाई, ऐसे भागवत का 10वां स्कंद जो है वो कृष्ण प्रेम का प्याला है, जो पिएगा वो बड़ी सुख की नींद में भगवान के सपने देखता रहेगा, मतवाला सपने देखता रहेगा। नहीं तो क्या सपने देखते हैं आप जानू। तो ये बात करते हुए ऐसे लगता है कि जैसे हम दो चीजों का मिश्रण है, शरीर और आत्मा का, तो शरीर की भी आवश्यकता है और आत्मा की भी आवश्यकता है। शरीर को भोजन चाहिए, स्नान चाहिए, ऐसे आत्मा का भी नित्य निरंतर आध्यात्मिक श्रवण। शरीर के भोजन के लिए भगवान ने मुख दिया है और आत्मा के भोजन के लिए कान दिए, और कान दो दिए हैं, इसलिए ज्यादा काम वो करना चाहिए। मुख को भी ढकना लगा दिया है, दो होंठ दिए हैं बंद करने के लिए, आंख को भी ऊपर, लेकिन कान बगैर ढकने के बनाए हैं। तो श्रवण कैसे भी करना चाहिए। तो पहले स्कंद भागवत में तीन श्लोक मंगलाचरण के बाद ऋषि नैमशरण्या के स्थान के ऊपर, नैमशरण्या को कहा है कि धर्म के जानने वालों के लिए अच्छा स्थान है, किसी काम करने के लिए देश काल, देश का महत्व होता है, कौन सा देश है, नैमशरण्या देश है, तो देश भी अच्छा होगा तो वहां धर्म का कार्य विशेष प्रभाव का होगा। जैसे गंगा का किनारा है, तीर्थ स्थान है, तो जो कोई भी अनुष्ठान ऐसे स्थान पे करना वो ज्यादा फलदायक होता है। तो नैमशरण्या का स्थान भी भगवान ने निर्देशित किया था। ये सारे ऋषि कहां बैठे थे पहले, प्रयागराज में, गंगा जमुना सरस्वती के संगम के स्थान में बैठे थे, वहां वेणी माधव है, प्रयागराज में वेणी माधव का मंदिर है भगवान का, बिंदु माधव मेरे ख्याल में है बनारस में, और वेणी माधव है यहाँ, या ऐसे वाइस वर्षा है, लेकिन नाम ये हैं और दो स्थान हैं। तो सारे ऋषि उनको प्रार्थना करने गए कि कलयुग आ गया है, लोग बेचारे बहुत आगे चल के पीड़ित होंगे, अब हमको कोई ऐसा स्थान बताइए जहां हम ऐसा अनुष्ठान करें दीर्घ काल तक जिससे लोगों को कलयुग के दुख से बचा सके, अथवा कलयुग की तेजी से बढ़ने की गति को धीमा कर सके। इसका मतलब यह है कि ये ऋषि स्पीड ब्रेकर बनाना चाहते थे कलयुग के रास्ते पे, ताकि बिल्कुल तेजी से न जाए, ब्रेक तो लगाए कहीं ना कहीं। तो ये इन ऋषियों का काम है कि स्पीड ब्रेकर बनाए। तो भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र रवाना किया और कहा कि इसके पीछे चले जाओ, जहां ये जाके निवास करेगा, जहां ये नीचे जाए वो स्थान आपके इस कार्य के लिए आप चुन लेना। तो वो सुदर्शन चक्र वहां से चला और जहां अब नैमशरण्या है लखनऊ से 100 किलोमीटर की दूरी पे, वहां ये सुदर्शन चक्र पाताल में चला गया और वहां पानी बाहर आया और तीर्थ बना, चक्र तीर्थ। तो उस स्थान को चुना गया भागवत की कथा जन सामान्य के लिए, इससे पहले विशेष व्यक्ति के लिए कथा तो हो चुकी थी, पहले विशेष व्यक्ति इस कथा के अधिकारी बने भगवान श्री कृष्ण की रानियां और वज्रनाभ, उन्होंने ये कथा सुनी उद्धव से, और ये कथा सुनी गोवर्धन की तलहटी में कुसुम सरोवर के पास। ये कथा पहली उद्धव ने बताई जिसने साक्षात भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए, और सबने भगवान श्री कृष्ण ने सबको कहा आप मांगिए क्या चाहिए, तब सबने एक ही चीज मांगी, सबने भगवान को प्रार्थना की कि जहां जहां आपकी कथा हो आप वहां प्रकट हो जाया करो। तो भगवान ने कहा तथास्तु। जैसे राम कथा की ये महिमा है कि जहां राम कथा होती है वहां हनुमान आ जाते हैं, ऐसे भागवत जहां श्रवण वर्णन होती है वहां भगवान श्री कृष्ण साक्षात आते हैं और भक्ति वहां अपने आप आकर सबके हृदय में बैठती है। भागवत से भक्ति निकलकर श्रवण करने वालों के हृदय में बैठती है और जब भक्ति हृदय में आती है तो वो भगवान को खींच कर लाती है। भगवान को कौन हृदय में खींच कर लाता है? भक्त के भक्ति, ये भक्ति की शक्ति है। फिर ये कथा विशेष व्यक्ति परीक्षित महाराज के लिए सुकताल के स्थान में सुखदेव गोस्वामी ने सुनाई। ये भी विशेष व्यक्ति और कुछ ऋषियों के लिए थी, सामान्य जन समुदाय वहां नहीं था। ये भगवान के 33 साल के माने 33 भगवान श्री कृष्ण के 200 साल के जाने के बाद ये कथा का आयोजन हुआ था। मेरे ख्याल 33 साल 33 ईयर से पहली कथा जब बताई गई तो परीक्षित महाराज तो वहां थे, लेकिन उस वक्त परीक्षित महाराज को ये कहा गया कि आप कलयुग का प्रभाव को रोकने के लिए दिग्विजय के लिए जाइए। और तब परीक्षित ने कहा मैं कथा कब सुनूंगा, बोला आपकी कथा की विशेष व्यवस्था की जाएगी। तो परीक्षित तब तो दिग्विजय के लिए चले गए जब कलयुग को जाके परास्त किया। ये उस वक्त कथा पहली हुई, उसके बाद परीक्षित महाराज के लिए कथा हुई वो सुखदेव गोस्वामी ने की। और ऐसी कथा भागवत की चार कुमारों ने नारद को भी बताई हरिद्वार में। हरिद्वार में आनंद वन के स्थान के ऊपर सनक आदि कुमारों ने नारद को कथा बताई, लेकिन वो भी सामान्य लोगों के लिए नहीं थी। वो भक्ति के दो बेटों ज्ञान और वैराग्य के युवा अवस्था प्राप्त करने के लिए थी। भागवत तो नारद जी ने व्यास देव को भी बताई, लेकिन एक व्यास को बताई, व्यक्ति को जिसने भागवत की रचना की। और पहले भागवत ब्रह्मा जी को चार श्लोकों में साक्षात भगवान नारायण ने दी, चतुर्श्लोकी भागवत। लेकिन मानव जन जो भागवत हम सुन रहे हैं वो नैम श्रेणिया में सुनाई गई। तो नैम श्रेणिया के ऋषियों ने भागवत में भगवान श्री कृष्ण को समझने के लिए 6 प्रश्न पूछे। उनमें से हम 3 प्रश्नों का वर्णन और उनके उत्तर का वर्णन गत 3 दिन से करते आ रहे हैं। और तीनों प्रश्न एक ही है अगर अभी ध्यान करके देखेंगे तो। पहला प्रश्न क्या है? सब लोगों का श्रेय सरल भाषा में समझाइए, एक होना चाहिए, सिर्फ एक। बहुत से नहीं बातें बताना, ये करो ये करो ये करो, नहीं, एक ही बात बताइए। सब लोगों का, सामान्य जनता का कल्याण के लिए श्रेय एक सरल भाषा में बताइए। तो उत्तर क्या दिया? जो पर धर्म है, उत्तम धर्म जो सबके लिए है, जो उनके जीवन को परिवर्तन कर देगा, वो है अधोक्षजय भगवान की भक्ति, अहितुकी अप्रतियता। उस भक्ति का कोई हेतु नहीं होना चाहिए और वो कभी रुकनी नहीं चाहिए, धारावाहिक चलनी चाहिए। तो दूसरे प्रश्न में है कि शास्त्र बहुत सारे हैं, उसमें विभाग भी बहुत हैं, उनका सार क्या है? जिनसे आत्मा की संतुष्टि हो। तो कहते हैं वासुदेव भगवती कथा, वहां अधोक्ष कहा, वहां वासुदेव का, वही भगवान, एक ही भगवान का नाम दोबारा हो गया दूसरा, वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजित। तो एक ही काम क्या है, भगवान वासुदेव की भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को जन्म देती है। और श्रेय एक क्या है, भगवान की भक्ति, अधोक्ष की धैर्य की भक्ति, तो दोनों एक ही बात हो गई ना। अब और स्पष्ट प्रश्न वाला स्पष्ट कर रहा है कि जो देवकी और वसुदेव के घर में अवतार लिया था ना भगवान, उसके बारे में बताया, क्या उसी की भक्ति करनी है क्या, ये और स्पष्ट हो गया ना प्रश्न। तीनों का एक ही अर्थ हो गया ना कृष्ण भक्ति, तीनों प्रश्नों का अर्थ मुख्य एक हो गया कृष्ण भक्ति। क्यों भाई, ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है, भक्ति अधोक्ष आदि की, वासुदेव भक्ति, और फिर वासुदेव को स्पष्ट करने के लिए बोल दिया देवकी और वसुदेव के घर में जो प्रकट हुए थे उसकी भक्ति, ये तीन बातें हो गई। लेकिन उसकी भक्ति करने की शिक्षा के लिए भगवान के अन्य अवतारों का वर्णन श्रवण जरूरी है। और ये बात सातवें स्कंद भागवत में नारद जी कह रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को, सामान्य का अर्थ होता है गृहस्थी, अगर लिया जाए तो सामान्य का अर्थ है गृहस्थी, क्योंकि जो सन्यासी हैं वो तो वैसे भी सारा दिन साधन भजन में लगे हैं, ब्रह्मचारी है वो तो अपने गुरु जैसे कराएगा वैसे ही करेंगे, उनके लिए अपना कोई मत चलाने की जरूरत नहीं है, वानप्रस्थ सब कुछ छोड़ के गए हैं वो तो साधु संत में रहेंगे संग में, जन सामान्य का मतलब गृहस्थी, ऐसे मानना चाहिए, जो संसार के कार्यों में अपने आप को व्यस्त रखती है उनके लिए, इसको सामान्य ऐसे समझना तो सरल हो जाएगा। क्योंकि वहां युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न भी ऐसा ही पूछा है कि हम मूढ़धी हैं, हम गृहस्थी हैं, मूढ़धी हैं। अब युधिष्ठिर महाराज धर्मराज हम सबको हमारा प्रतिनिधि होके कह रहा है कि हम मूढ़धी है, मतलब हमारी बुद्धि संसार में इतनी अटकी हुई है कि हमको हमारे कल्याण का पता नहीं लगता है। ये नारद से प्रश्न कर रहे हैं कि आप कृपा करके कोई वहां भी शब्द है अंजसा, यहां ये पहले प्रश्न का शब्द अंजसा है ना, आंखों में जैसे काजल डालते हैं जो चमकता नहीं है, चुभता नहीं है, ऐसे हम गृहस्थी हैं, ऐसे मत बताना कि घर छोड़ के चलेगा वो तो चुभेगा हमको, ऐसे मत बताना कि दुकान बंद करो ये तो चुभेगा, इतना सरल बताओ कि हम उसको डाइजेस्ट कर सके, उसका हजम कर सके, इससे ज्यादा मत बताना अंजसा। वहां भी वो जो श्लोक है सातवें अध्याय का, मेरे ख्याल में सातवें स्कंद की चौदहवां अध्याय, आपकी मशीन में निकालो सातवें अध्याय का चौदहवां श्लोक निकालो तो वो शब्द एग्जैक्टली निकाले सातवां स्कंद। तो अंजसा मूढ़धि ग्रस्त, तो वहां नारद जी उत्तर देंगे, यहां सूत गोस्वामी उत्तर दे रहा है, तो नारद जी का उत्तर सूत गोस्वामी के उत्तर से ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि नारद सूत के गुरु, सुखदेव उसके गुरु, व्यास उसका गुरु। और ऐसा ही प्रश्न पहला या दूसरा होगा, श्री राजो युधिष्ठिर पहला या दूसरा होगा, पहला भी हो सकता है, देखो तेरहवा है मेरे ख्याल, चौदह वासुदेव कथा बाद में, पहले प्रश्न है फिर उत्तर है। हाँ लाइए, हरे कृष्ण बोलो, ये पढ़ लो फिर आप निकालना पड़ेगा आपको, देखो ये भाग जाता है भैया, इसको ऐसे कहाँ जाना हूँ वापस। श्री युधिष्ठिर वाच, गृहस्थ एतान पदवीन विधिना येन च अंजसा, हम गृहस्थी हैं, हमारी पदवी गृहस्थी की है। और विधि ना ये न अंजसा, बताओ विधि का, लेकिन हो नरम, आंखों में डालें तो भी परेशान न हो। अंजसा ययाद देव ऋषि ब्रूही, हमारे ऊपर कृपा करे देव ऋषि बताइए। मादृशो किसके लिए, मेरे जैसे, मादृशो मेरे जैसे, गृह मूढ़ धी, गृहस्थ के अंदर पूरे रूप से जो, अब गृह मुंह का मैं अर्थ पढ़ लूं तो अच्छा रहेगा ना, गृह मूढ़ धी का अर्थ पढ़ता हूं। ग्रह मूढ़ धी, कंप्लीटली इग्नोरेंट ऑफ गोल ऑफ लाइफ, मैं अपने जीवन के जो लक्ष्य है उसको नहीं जानता हूं। मेरे जैसे मैं ग्रस्त में हूं, ग्रस्त में हमारा लक्ष्य होता है कि परिवार कैसे पाले, ग्रस्त का लक्ष्य होता है परिवार कैसे पाले, इससे ज्यादा मुझे पता नहीं है। ये युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं, जिसके जिसके घर में सत्संग नित्य होता था और भगवान श्री कृष्ण साक्षात जिसके घर में आते थे, वो ये बात कह रहे हैं कि हमको क्या करना चाहिए। युधिष्ठिर, महाराज युधिष्ठिर इंक्वायर्ड फ्रॉम नारद मुनि, ओ माय लॉर्ड, ओ ग्रेट सेज, काइंडली एक्सप्लेन हाउ वी हु आर स्टेइंग एट होम विदाउट नॉलेज ऑफ द गोल ऑफ लाइफ मे ऑल्सो इजीली अटेन लिबरेशन अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ वेदस। हरे कृष्ण, क्यों जी, ये प्रश्न भी ऐसा ही लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अब नारद जी का उत्तर इसमें आपको बता दें। नारद मुनि ने कहा, श्रृणवम भगवतो अभीक्षणम अवतार कथामृतम, ये उत्तर है इसका। श्रृणम भगवतो अभीक्षणम, हर समय भगवान की कथा सुननी चाहिए। कौन सी? अवतार कथा अमृतम, भगवान के अवतार की कथा। क्या होगा इससे? शर्धधानो यथा कालम उपशांत जनावृत, भगवान वासुदेव के अवतार की कथा को सुनना चाहिए। यथा कालम, इसमें प्रभुपाद जी ने भावार्थ में लिखा है, ग्रस्तों के पास समय जैसे मंदिर के अंदर सुबह सवेले है वो नहीं होता है, उस वक्त बच्चों को स्कूल में भेजने का समय होता है और फिर दुकान पे जाने का समय होता है उनके पास। इसके भावार्थ में देखिए, दोपहर का समय है स्त्रियों के पास घर में, ऐसा लिखा है प्रभुपाद ने भावार्थ में, और जन सामान्य रात को 8 बजे के बाद वापस लौटेंगे, तो उसको यथा उचित समय पे कथा सुननी चाहिए। ये बहुत बड़ी बुद्धिमानी से इसका उत्तर लिखा हुआ है। अब सीसी का मेरे ख्याल में 20 खोले, उसमें चैतन्य महाप्रभु से यही प्रश्न पूछा है कि हम गृहस्थी है, हम क्या करें, जन सामान्य की बात वहां है, वहां इसको और क्लियर किया गया है ना। वो है रामचंद्र खान, सत्यराज खान ने पूछा है। सीसी 20 होगा? नहीं नहीं, 20 महाप्रभु का वृंदावन गमन वाले में जब ये आते हैं रथ यात्रा पे, तो 2 बार ये प्रश्न पूछा है कि हम गृहस्थी हैं, हमारे लिए वेदों में क्या सार शास्त्र का है। वहां उत्तर है महाप्रभु का, कृष्ण स्मरण नित्य वैष्णव सेवा, वैष्णव सेवा कृष्ण नाम स्मरण जल्दी भगवान की भक्ति कृष्ण के चरणों में प्रेम प्राप्त कराएगा। वैष्णव सेवा कृष्ण नाम स्मरण कृष्ण के चरणों में प्रीति पैदा करेगा। तो अब तीनों शास्त्रों में देखिए ना, भगवत गीता का, भागवत का, फिर उसी प्रश्न को बहुत स्पष्ट कर दिया चैतन्य चरितमानस। कौन सा? वो सातवें अध्याय का आप जो वो पहले पांच सात श्लोकों में नंबर अब मेरे को याद नहीं। हाँ, पंद्रह का तेसर रूप गोस्वामी की शिक्षा उधर है, ये पहले ऐसे भी हो सकता है तो मध्य में। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। तो ये भगवान श्री कृष्ण के अवतार के विषय में वसुदेव और देवकी का नाम लेकर पूछा है, और इसका उत्तर कल हमने पढ़ा था कि भगवान जीवों के ऊपर कल्याण करने के लिए इस पृथ्वी के ऊपर अवतार लेते हैं। उसके बाद दो श्लोकों में हमने पढ़ा कि ऐसे भगवान का कौन मूर्ख है जो नाम नहीं जपेगा, जो अनायास नाम जपने से घोर संकट से मुक्त हो सकता है अजामिल की तरह, तो कौन ऐसा कम बुद्धि वाला होगा जो इतना बड़ा अच्छा सौभाग्य नहीं प्राप्त करेगा। और फिर इसी प्रश्न को दोहराते हैं, इसी प्रश्न को चौथे प्रश्न के रूप में इसी को देखें। चौथा प्रश्न क्या है अभी आज हम चौथे प्रश्न को पूछें समझेंगे। अब तस्य का मतलब ये श्लोक शुरू होता है तस्य मिला क्या, कोई बात नहीं। एक एक सत्रह में देखिए, तस्य कर्माणि उदाराणि परिगीतानि सुरीभिः ब्रूहिणः शरदधानानां लीलया ददत्तः कलाः। ये तस्य जो है ना, ये तस्य लगाइए इधर इधर, बारहवें श्लोक में लगाए तस्य लगाइए बारहवें श्लोक में। तस्य मतलब देवक्यम वासुदेव जातो यस्य, यस्य का अर्थ है जो भगवान देवकी और वासुदेव के यहां प्रकट हुए। कर्माणि उसका क्या लीला है, उदाराणि उनकी लीला सबके उद्धार के लिए है, कल्याण के लिए है। परिगीतानि जिसको देवता पुरुष भी साधु संत भी गाते हैं, शूरी भी का बड़े महात्मा लोग, हम बड़े श्रद्धालु हैं इसलिए हमारे को कृपा करके उनकी उद्धार लीलाओं का चरित्र सुनाओ। तो अब भक्ति कैसे हो उसमें, तो भक्ति करो ये तो तीन प्रश्नों में उतरा है। भक्ति कैसे हो तो मैं भगवान की लीला का श्रवण करो। तो मानसूता ने कहा कि कोई भाई एक ही लीला का श्रवण करो, तब तू पांचवा प्रश्न पूछते हैं। अथ आख्या ही हरे रधी मन, अठारवा श्लोक। अथ आख्या ही हरे रधी मन अवतार कथा शुभा लीला विवधतः स्वरीरम ईश्वरस्यात्म मायया। अभी तो कहते हैं कि सारे अवतारों की कथा बताई, तो हम 17वें श्लोक को पढ़ा है ना, इसका थोड़ा सा भाव पढ़ेंगे। प्रभुपाद ने क्या इसका अनुवाद लिखा है, पढ़िए जरा 17वें का अनुवाद पढ़िए हिंदी में। अब छोड़िए, बाद में देखेंगे इसको, अभी इसका था करते हैं। हाँ,
मेरे दिव्य कर्म उदार तथा अनुग्रहपूर्ण है,
माने उनके, उनके मतलब भगवान श्री कृष्ण के, उनके दिव्य कर्म अत्यंत उदार। उदार का क्या अर्थ होता है? उदार का अर्थ नीचे गिरे हुए को उठाना, उदार का अर्थ होता है गिरे हुए को उठाना। जो आदमी गिर पड़ा है उसको उठाना, उसको बोलते हैं उदार। किसी का उधार करना, उधार करना मतलब कोई बेचारा गिर गया है उसको उठा लेना, डूब रहा है उसको बचा लेना, ये उधार हो गया। तो भगवान के दिव्य कर्म उधार हैं। फिर और अनुग्रहपूर्ण है, अनुग्रहपूर्ण है का मतलब अनुग्रह, अनुग्रह तेषाम अनु कृपा अपने पे होती है, दया दूसरे पे होती है। अपना बच्चा है ना, उसके ऊपर कृपा होती है, बाकी किसी को नहीं जानते हैं उसको दया बोलते हैं, शब्दों में थोड़ा सा अंतर होता है। अनुग्रह गुरु शिष्य के ऊपर करता है, उसको अनुग्रह बोलते हैं, क्योंकि ये थोड़ा गहरा है। भगवान अपने भक्त के ऊपर अनुग्रह करते हैं, वो तो हमने पहले श्लोक कहा, उसमें लिखा था तेषाम अनुकंपार्थम अनुग्रह अनुग्रहामी। अर्जुन कहेगा 11वें अध्याय भगवद गीता में, तब अनुग्रहाद, आपके अनुग्रह के कारण आपने कृपा करके मुझे ये समझाया है। तो भगवान के ये उद्धार कर्म उनका अनुग्रह है। अनुग्रह का मतलब उनकी अपनी स्वेच्छा से भक्त वत्सलता का चिन्ह है। इसको ऐसे समझें कि हम कहें कि भगवान आ जाओ तो नहीं आ सकते हैं, वो अपना अनुग्रह करके आ सकते हैं। जैसे सूर्य को आप रात को 11 बजे बोलोगे अभी उठ जाओ, अभी उग जाओ, हमको जरूरत है, तो नहीं उगेगा। वो अपने टाइम पे जब उसकी इच्छा होगी तब प्रकट होगा। तो ऐसे भगवान का अवतार भगवान के अनुग्रह का सूचक है। भगवान अनुग्रह करेंगे तभी प्रकट होंगे, उनके जब वो हृदय में अनुग्रह का भक्त वत्सलता, अनुग्रह भी भक्त वत्सलता का एक 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 जो है वाचक है। तो भगवान के कर्म और लीलाएं उदार और अनुग्रही है, अनुग्रह के कारण है। हाँ जी,
और नारद जैसे महान विद्वान पंडित और मुनि उनका गायन करते हैं।
तो ये सूरी भी का मतलब, वैसे सुर कहते हैं देवता को और नारद को कहते हैं देव ऋषि, तो ये सूरी भी का अर्थ है नारद। नारद को देव ऋषि कहते हैं और सुर देवता को कहते हैं, तो सूरी भी ही मतलब देव ऋषि नारद आदि। परिगीतानी, परिगीतानी प्रचार करते हैं, प्रचार करते हैं। नारद जैसे दिव्य ऋषि इसका प्रचार करते हैं, जगह जगह पे भगवान के लीलाओं का श्रवण वर्णन करते हैं। हाँ जी,
अतः कृपया हमें उनके अपने विविध अवतारों में संपन्न साहसिक लीलाओं के विषय में बताएं।
हम बड़े श्रद्धालु हैं,
क्योंकि हम सुनने के इच्छुक हैं।
पहले पहले सुनने के लिए इच्छुक होना चाहिए, ये अपनी बात पहले कहते हैं। मानो वो कहे कि मैं कितने अवतारों की कथा बताऊं, ये तो बड़े जितना सा ये तो उम्र लग जाएगी। नहीं, हम श्रद्धालु हैं, आप बताइए, क्योंकि अवतारों की तो पूरी भागवत बतानी पड़ी ना, तो आपको बता, मैं कहूं कि आप कहें बैठेंगे भागवत पूरी सुनने के लिए, तो पहले श्रद्धालु कहना पड़ेगा, तब तो आधा घंटा बढ़ाएंगे, नहीं तो 10 बजे तो बंद करना पड़ेगा। तो एक शब्द भी अंदर डालना बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसका तात्पर्य प्रभुपाद जी का दो लाइनें पढ़िए।
कुछ अल्पज्ञों का मत है भगवान निष्क्रिय हैं।
भगवान निष्क्रिय मत का मतलब क्या है कि भगवान लाइट है, लाइट में तो कोई क्रिया होती नहीं है, लाइट में क्या क्रिया है भाई, भगवान शून्य है, शून्य है भगवान, जीरो है, तो मतलब कुछ भी नहीं है तो क्रिया क्या है भाई, लाइट में कोई क्रिया है क्या? हाँ तो फिर
किंतु ऐसे कभी नहीं रहते, उनके कर्म उदार तथा भव्य हैं।
अभी कर्म है इसका मतलब व्यक्ति होगा तब कर्म करेगा, हाँ लेकिन कैसा व्यक्ति है? दिव्य व्यक्ति है, तो उसके कर्म दिव्य है, और दूसरा शब्द क्या है? उदार है।
उदार और भव्य,
एक तो उदार है का मतलब दूसरे को उठाएगा गिरे हुए को, तो उससे ज्यादा शक्तिशाली होगा वो, तब ये वो काम कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। अब मेरे को उठाए, ये बच्चा उठाएगा मेरे को, मैं गिरूंगा तो हाँ उठाएगा मेरे को, बोलता ना तो ऐसे सामने वाला शक्तिशाली वो क्रेन कोई लाएगा तब हमको उठाएगा तो भव्य क्रेन हो जाएगा तो उतनी शक्ति भी होनी चाहिए ना, तो फिर
उदार तथा भव्य हैं, उनकी सृष्टियां चाहे भौतिक हों या आध्यात्मिक समान रूप से आश्चर्यजनक हैं और समस्त विविधताओं से पूर्ण।
अब वो ये दुनिया जिसने बनाई है कितनी आश्चर्यजनक है कि नहीं है, पहाड़ पर्वत नदियां ये देख के आश्चर्य होता है कि नहीं होता है, और कितनी वैरायटी है इस दुनिया में, वैरायटी है कि नहीं है, वैरायटी है कि नहीं इस दुनिया में, मौसमें बदलती रहती हैं, कभी फूल हरे खिलते हैं कभी गुलाबी खिलते हैं, इस दुनिया कितनी रंगीन है, तो जिसको इसको बनाने वाला है वो कितना रंगीन होगा है? उसका नाना रंग होगा कि नहीं होगा, तो उसकी भौतिक दुनिया भी इतनी आश्चर्यजनक है तो फिर आध्यात्मिक दुनिया कितनी आश्चर्यजनक होगी। तो ये उनके वहां फिर
उनका गुणगान श्री नारद व्यास वाल्मीकि देवल असित मधु श्री चैतन्य रामानुज विश्वस्वामी निम्बार्क श्रीधर विश्वनाथ बलदेव भक्ति विनोद भक्ति सिद्धांत सरस्वती तथा,
और एक लफ्ज नहीं लिखा है अभी हमको लिखना पड़ेगा, और प्रभुपाद ने ये इतने सारे नाम लिखे हैं, इन्होंने भगवान के जो पिछला पार्ट है स्पिरिचुअल वर्ल्ड का वर्णन किया है, जो दो दो सृष्टियां भगवान की है ना, भौतिक और आध्यात्मिक, तो ये जो लोग हैं ये सब आध्यात्मिक सृष्टि का वर्णन किया है कि भगवान की आध्यात्मिक सृष्टि कैसी है। भौतिक सृष्टि का वर्णन तो साइंस विज्ञान ने बहुत कर दिया है इसलिए हम उसमें आकर्षक हैं, लेकिन ये दूसरे साइंटिस्ट है, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट है, इन्होंने वर्णन स्पिरिचुअल वर्ल्ड का किया है। अब इसमें भाई कोई नारद को तो देखा नहीं हमने, व्यास बहुत पुराना हो गया, वाल्मीकि कबाकर रामायण की सारी कथा लिख के गए, देवल आसित मध्व ये तो न हमको मालूम नहीं, श्री चेतना महाप्रभु भी 500 साल पहले हुए, ये तो मुगल काल के समय की बात है, ये तो हिस्ट्री में लिखी हुई है, इसको तो नकारा नहीं जा सकता। और फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती 200 साल पुराने हैं और वृंदावन में रहे हैं, जयपुर के गोविंद देव मंदिर में उनके कृपा पात्र बलदेव विद्याभूषण गए थे, उसको 200 साल भी नहीं हुए, वो तो रिटन हिस्ट्री है अभी की, जिन्होंने गोविंद भाषा लिखा। और फिर भक्ति विनोद, ये तो ब्रिटिश शासन के जगन्नाथपुरी के जज थे, जिन्होंने अंग्रेजों को अंग्रेजी भाषा में ये भागवत धर्म की विषय में पुस्तक लिख के दिए, और बड़े बड़े जो वायसराय आते थे उनसे मिलते थे, तो ये तो हिस्ट्री कोई पुरानी नहीं है। और भक्ति सिद्धांत उनके पुत्र वो बाल ब्रह्मचारी थे, जिन्होंने पूरे भारतवर्ष में 64 जगहों के ऊपर ऐसे आध्यात्मिक जगत की शिक्षा देने के लिए जो है वो मठ मंदिर बनाए, और फिर प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व के अंदर परिगीतानी, यहां लिखा है शूरी भी परिगीतानी, इनके चरित्र का प्रचार नारद आदि करते हैं। अब इसके उस भगवान के दिव्य कर्मों उदार लीलाओं का प्रचार पूरे विश्व में प्रभुपाद जी ने किया। शूरी भी यहां हमारे आजकल के आधुनिक इस वक्त में अगर ठीक तरह से हम समझेंगे तो प्रभुपाद ने ये कार्य पूरी दुनिया में किया। एक दुनिया का ऐसा अब देश नहीं है उस वक्त में रशिया के इतने कम्युनिस्ट जिसको बहुत सख्त रिजिम के अंदर भी प्रभुपाद मास्को गए और वहां एक बीज डाल के आए, आज विस्फोट हुआ उस बीज का। आज इस वक्त में जो जो भागवत धर्म का प्रचार सबसे ज्यादा रशिया में हो रहा है, आरंभ अमेरिका से हुआ, अब विस्फोट रशिया में हुआ है और अंडरग्राउंड बम चाइना में रखे हुए हैं। हमारे बम ये भागवत के पुस्तक हैं, गीता के पुस्तक हैं, ये हमारे बम हैं। ये जहां जहां जाएंगे वहां समय आने के ऊपर विस्फोट करते हैं और इस विस्फोट में लोग तरते हैं, मरते नहीं है। बाकी आतंकवादी लोगों को मारते हैं, ये स्पिरिचुअल आतंकवादी लोगों को तारते हैं, उनका उनके सारे कष्टों को नाश कर देते हैं। तो ये कार्य गीतानी शूरितानी, जो यहां ये शूरी भी परिगीतानी, आधुनिक युग में प्रभुपाद ने तो शास्त्र की परिभाषा में नारद जी का नाम लेके लिखा, लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो पूरे विश्व के अंदर इतना अद्भुत एक आध्यात्मिक आंदोलन जो स्थापित हुआ है, उन लोगों को कृष्ण कथा सुनने को मिल रही है, अवतारों की कथा सुनने को मिल रही है वासुदेव की, वो तो एक व्यक्ति का ये चमत्कार है। तो ये बात बहुत, और जहां जहां प्रभुपाद ने बोला केवल आध्यात्मिक जगत के ही वैभव का वर्णन किया है, भगवान के वैराइट कितना आनंद है उस जगत का, उसका वर्णन किया है और उस आनंद को इस दुनिया में रहते हुए भी अनुभव कर सकते हैं, उसका आनंद ले सकते हैं, ये उसकी विशेषता है कि उधर जाएंगे तब आनंद मिलेगा, नहीं, इस दुनिया में रहते हुए भी, इस शरीर में रहते हुए भी उस आध्यात्मिक जगत के आनंद का अनुभव कर सकते हैं, ये इसकी विशेषता है। तो आगे इसको पढ़िए।
ये दोनों प्रकार की सृष्टियां ऐश्वर्य सौंदर्य तथा ज्ञान से परिपूर्ण है, किंतु
हाँ, ये दोनों सृष्टियां मतलब भौतिक सृष्टि ये जगत और आध्यात्मिक सृष्टि, ये दोनों सृष्टियां फुल ऑफ ऑपुलेंस, ये वैभव से, सुंदरता से और ज्ञान से परिपूर्ण है। इस दुनिया में जो साइंटिस्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? हाँ, री, इसका मतलब क्या है? पहले पढ़ा है उसको ढूंढ रहे हैं, तो रिसर्च कर रहे हैं, सर्च ने पहले से है उसको खोज रहे हैं। जैसे न्यूटन ने एक लॉ बनाया, कौन सा लॉ? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उसमें क्या हुआ था, उसने क्या देखा? सेब नीचे गिरा, तो क्या उससे पहले, न्यूटन से पहले सेब ऊपर उड़ जाते थे? हाँ, पेड़ से सेब नीचे गिरते थे, कैसे उड़ते थे ऊपर, पहले ही गिरते थे ना, तो इसका मतलब ला तो पहले था, न्यूटन ने कहा कि मेरा ला है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सेब पेड़ से नीचे गिरता, क्या उससे पहले नहीं गिरते थे? अब न्यूटन ने भगवान के ला को अपना नाला बना दिया। तो ये पहले सब ज्ञान इस सृष्टि में है, उसको जानने वाले रिसर्च कर रहे। एजुकेशन का क्या अर्थ है? टू ब्रिंग आउट, जो अंदर में है उसको बाहर निकालना। टीचर का काम है कि सबके अंदर में कोई विशेष जो विशेषता होती है, टैलेंट होता है, उसको बाहर कैसे निकालना है। ये ग्रीक वर्ड है, इसका अर्थ है टू ब्रिंग आउट। और हमारी एजुकेशन का मतलब है बोरी में जैसे भरते हैं ना वो आलू और प्याज, दबा दबा के भरो बाहर से किताबों का, ये अंदर ठोंसना नहीं है, अंदर से बाहर निकालना है। एजुकेशन का मतलब है जो अंदर है उसको बाहर निकालो, ऐसे नहीं है कि जबरदस्ती उसके अंदर थोपते जाओ। इसलिए जो असली एजुकेशन है वो न होने के कारण लोग पढ़े लिखे तो हैं, गिटमिट गिटमिट अंग्रेजी बोल लेते हैं, लेकिन समझ पैसे की भी नहीं। विजडम नहीं आई है, बुद्धिमानी नहीं आई है लोगों में। केवल पढ़े लिखा होना कौन हमको, आप परसों एक बता रहा था, हजारों पढ़े लिखे पोस्ट ग्रेजुएट काम करते हैं और उसने अपनी ऑफिस में लिखा है मैट्रिक फेल। हाँ मैट्रिक फेल है और सारे एमबीए पीएचडी उसके पास काम करते हैं, तो बुद्धिमान कौन हुआ, पढ़ा लिखा के अनपढ़? तो एजुकेशन का मतलब टैलेंट जो जिसके अंदर है उसको बाहर निकालने के लिए ऐसी परिस्थितियां देनी। मानो कोई आर्टिस्ट है तो उसको सारा सामान दे दो ताकि वो अंदर से उसका वो जो जो उसका टैलेंट है उसको बाहर निकाले, जो उसकी वो जो प्रतिभा है उसको बाहर निकाले। ऐसे नहीं उसको तो उसके ऊपर पानी डाल के उसको बुझाते जाओ और कहो कि कुछ और उधर बनाना है। तो ये यहां लिखा है कि भगवान का जो ये भौतिक और आध्यात्मिक जो दोनों सुंदर भी है, ज्ञान से परिपूर्ण है, बहुत सुंदर है। आगे पूरा कर दिए इसका,
किंतु आध्यात्मिक जगत अपने सच्चिदानंद स्वरूप के कारण अधिक भव्य है।
अब ये इतना सुंदर है तो आध्यात्मिक जगत इससे कितना सुंदर होगा।
भौतिक सृष्टियां कुछ काल के लिए आध्यात्मिक जगत के विकृत प्रतिबिंबों जैसी प्रकट होती हैं और उनकी तुलना सिनेमा से की जा सकती है।
अब ये बहुत सुंदर सा उदाहरण है और बहुत सरल से समझ में आने वाला उदाहरण है कि सिनेमा के अंदर, अथवा सिनेमा अभी थोड़ी कम हो गई, ये सामने का जो टीवी है इसके अंदर जो आप सीरियल देखते हैं, ये सीरियल जहां असली रिकॉर्डिंग हुई है उसका ये क्या है, प्रतिबिंब कुछ इसको जो भी कहें आप, इमेजेस हैं जो यहां देखे जा रहे हैं। जब उन्होंने वहां इसकी शूटिंग की होगी तो जो जो वहां व्यवस्था होगी वहां दिख रही है या उन्होंने तो वहां जो है वो खाया पिया होगा वो दिखता नहीं है इसमें। हाँ एक दूसरे से मजाक मस्करी किया होगा वो भी नहीं दिखती नहीं है, और फिर पैसा लिया होगा वो भी नहीं दिखता है। दिखता है नहीं दिखता है ना, लेकिन हम इसी को देख के खुश हो जाते हैं कि नहीं होते? हम इसी को देख के खुश होते हैं और पागल हो जाते हैं, टाइम बे टाइम इसी को देखते रहते हैं। ऐसे ये जो दुनिया है ये आध्यात्मिक दुनिया की सिनेमा का स्क्रीन है, इसके ऊपर जो हो रहा है वो तो थोड़ा सा दिख रहा है और हम इसी में पागल हो गए हैं, और वहां वो माल मली ना खा के बैठे खुश रहे उनका हमें पता ही नहीं है। वो कभी हम उदाहरण दिया था वो उसके अंदर हीरो को कोई हीरोइन को कष्ट आ जाए तो हमको रोना आता है, और उस वक्त वो कहीं पिकनिक मनाने गई होती है, वो तो होती नहीं है स्क्रीन में, हम घर में रोते हैं और वो पैसा कमा के घूमने गई होती है। ये सच है कि झूठ है? तो इस दुनिया का यही हाल है, ये इस दुनिया आध्यात्मिक दुनिया का सिनेमा हाल है, और लोग कितने लोग हैं जो असली एक्टर को जाके देखते हैं तो सिनेमा में अपना जीवन पूरा कर देते हैं। अच्छा जितने लोग सिनेमा देख रहे हैं सीरियल देख रहे हैं उसमें से कितने परसेंट लोगों ने उन असली लोगों को देखा होगा, कितना परसेंट होगा? बहुत कम ना। तो इस दुनिया में उसको नहीं देख सकते है? तो इस दुनिया को देख देखते मरते भगवान को देखने वाले कितने होंगे जो इस दुनिया का बनाने वाला है? तो ये उदाहरण प्रभुपाद ने बहुत सरल दिया है लेकिन बहुत सत्य है कि हम सिनेमा को देख के ही समझते हैं सब कुछ है, लेकिन सिनेमा सब कुछ नहीं है, इसको बनाने वाला इसको दिखाने वाला वो इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो पढ़ लीजिए पूरा, सिनेमा अल्प है, ये तो प्रभुपाद ने ऐसा लिख दिया है, अंजसा नहीं है। सिनेमा इसका मतलब ये का मतलब सिनेमा अल्प लेस इंटेलिजेंट अल्पज्ञ पुरुषों को आकर्षित करती है। क्या है? एक फॉल्स थिंग्स क्या है?
वे उन अल्पज्ञ पुरुषों को आकृष्ट करती हैं जो मिथ्या वस्तुओं द्वारा आकृष्ट होते हैं,
जो के मिथ्या वस्तुओं द्वारा आकर्षित होते हैं। इससे इससे आपके लिए क्या संदेश है? हाँ, क्या इसका क्या संदेश है? टीवी देखने वाले हाँ अल्पज्ञ हैं। अल्पज्ञ का मतलब है कम बुद्धि वाले हैं। इसका अर्थ क्या होगा? टीवी को देखने वाले कम बुद्धि वाले हैं। तो भाई बड़े उत्तम बुद्धि वाले कौन है? ज्यादा बुद्धि वाले भागवत को श्रवण करने वाले। दोनों में अंतर है ना? हरे कृष्ण। लेकिन फिर भी लोग टीवी को देखेंगे। क्यों? कि वो माया का आविष्कार है और हम माया बहुत लुभावनी होती है। इसलिए एक जगह प्रभुपाद ने लिखा है कि भारतवासियों ने भागवत को समझकर और विश्व में प्रचार प्रसार नहीं किया है, इसलिए पूरे विश्व के अंदर आतंकवाद और अन्य सारे कलमश हैं, उसका दायित्व भारतवासियों के ऊपर है। दुनिया में जितना भी उपद्रव हो रहा है उसका दायित्व भारत के ऊपर है, क्योंकि उन्होंने सत्य का, भागवत का, धर्म का प्रचार नहीं किया है जो लोगों को सद्बुद्धि देता।
मुझे तीन लोग बैठे हैं कि अपना कल पेपर में निकला सकते हैं कि आतंकवाद का जिम्मेदार भारत।
नहीं, इसका अर्थ ये है कि अगर हमसे अब मैं इसका हरे कृष्णा, और इसका स्पष्टीकरण ऐसे करता हूं मैं कि 60s में बड़े से बड़े धनी लोगों के बेटे हिप्पी बनकर और गांजा चर्च LSD पीकर पूरी दुनिया के अंदर जो सभ्यता थी उसके विपरीत जा रहे थे। कोई भी मां बाप अपने बेटों को नशे में लिप्त लड़कियों के गले में बाहें डाले हुए रोड के ऊपर घूमता नहीं देखना चाहता है। लेकिन ये हो रहा था। वो इस भागवत के संदेश के से एक वृद्ध व्यक्ति ने लाखों की संख्या में ऐसे चरित्रहीनता की ओर जाने वाले, संस्कृति के विपरीत जाने वाले, सभ्यता के विपरीत जाने वाले लोगों को वापस पथ के ऊपर लाया, जिसके लिए उस वक्त के पत्रकारों ने लिखा स्वामी जी हैज मेड हिप्पीज हैप्पी। हिप्पीज को हैप्पी स्वामी जी ने बनाया। ये पत्रकारों को लिखना पड़ा अमेरिका के अंदर और लंदन के अंदर के बिगड़े हुए, बिल्कुल समाज के विरुद्ध जाने हुए वाले लोग वापस लौट के आए और उन्होंने ये आंदोलन स्थापित किया जाके दुनिया के कोने कोने में। ये उन्होंने किया। और प्रभुपाद ने एक बार हिंदी प्रवचन में कहा, मैं एक वृद्ध व्यक्ति इस भागवत संदेश को लेकर गुरु की कृपा से महाप्रभु के वचनों को सार्थक करने के लिए निकला। ऐसे 5-7 और निकले हिंदुस्तान में प्रवचन करते हुए, कहते तुम एक पाकिस्तान के लिए रो रहे हो जो भारत का एक टूटा हुआ अंग है, हम पूरे दुनिया को हिंदुस्तान बना सकते हैं अगर 5 निकल जाओ तो। प्रभुपाद ने कहा मैं एक वृद्ध था, अगर जवान 5-25 तैयार हो जाओ और हम ये प्रचार पूरे दुनिया में करें तो पूरा दुनिया, वहां तो बोला हिंदुस्तान हो सकता है, मतलब भागवत धर्म का अनुयायी हो सकता है और दुनिया के अंदर सुख शांति का संभावना हो सकती है। मैं एक वृद्ध अवस्था 12 साल में मैं एक बूढ़े ने इतना काम करके दिखाया, तो आप जवान कब करोगे, निकलो आओ। ये उन्होंने निमंत्रण दिया था, उनका रिकॉर्डेड प्रवचन है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो हम कार्य ये करने जा रहे हैं, ये मानो कि अभी इसका इतना प्रभाव नहीं भी दिखे, लेकिन आज से 20-25-50 साल नहीं 100 साल के बाद भी कहीं न कहीं ये बहुत बड़ा रूप अपना धारण कर लेगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है कि हमको भागवत धर्म को समझने के लिए सीरियस होना चाहिए। चाहिए आगे आगे थोड़ा पढ़ लीजिए।
ऐसे मूर्ख व्यक्तियों को वास्तविकता का ज्ञान नहीं रहता और वे मिथ्या स्वरूप को ही सब कुछ मान बैठते हैं।
इसका इसका किसके ऊपर इसके इसका दायित्व किसके ऊपर है? जिनको आता है वो नहीं बताते हैं, इसके ऊपर है। एक बार हम वैसे जाते हैं हमेशा जेलों में प्रचार करने के लिए बंदियों को, क्योंकि प्रभुपाद ने 62 में दिल्ली में लिखा था तिहाड़ जेल के सुप्रिटेंडेंट को कि इन बंदी भाइयों का हम चरित्र उद्धार कर सकते हैं, हमको भागवत का संदेश देने का अवसर दिया जाए। उस एक लेटर के आधार के ऊपर पूरे विश्व में सारे जेलों में भक्त जाके बंदियों को प्रचार करते हैं। तो भारत में कई जेलों में हमारा जाने का ऐसे होता है चांस। तो अभी भी हम रोहिणी में गए थे, कोई 1800 कैदी थे, भगवत गीता है उनको वितरण करने के लिए। तो तिहाड़ में एक एक जुवेनाइल जेल है जिसमें 15-18 साल से छोटे बच्चे हैं, 18 से छोटे, और 2000 बच्चे थे। तो प्रवचन करने जब हम गए तो हमने कहा बेटा तुम जो यहां आज जेल में हो इसका कारण हम है, हमने तुम्हें शिक्षा दी होती तो तुम यहां नहीं होते, किसी स्कूल में कहीं अच्छी पढ़ाई करते होते। हमने तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारे बड़ों ने जो जानते हैं सही रास्ते को उन्होंने आपको सही रास्ता नहीं बताया, इसलिए आप आज जेल में हो। तो अपने ऊपर ये अगर मूर्ख है नहीं जानते हैं तो जो जानते हैं उन्होंने नहीं सिखाया उनका उनके ऊपर दायित्व। ये समझ में आना चाहिए कि जेल में अगर कोई बच्चे हैं छोटी उम्र के और कोई बच्चे कहा मुझे तुम इधर कैसे आए, बोला मेरे चाचा ने कहा वो लड़की जा रही है उससे मोबाइल छीन लो, तो मैंने मोबाइल छीना मेरे को पकड़ा, मैंने बोला चाचा जेल में आया, बोला चाचा नहीं आया, चाचा ने गलत रास्ता बताया, चाचा बाहर घूम रहा है, मैंने बोला परमात्मा भगवान तेरे हृदय में वो जेल में आया, बोला वो तो आया, भगवान तो जेल में भी तेरा साथ नहीं छोड़ा लेकिन चाचा जेल में डाल के भाग गया। तो गलत रास्ता बताने वाले बहुत हैं, सही रास्ता जिनको पता है वो नहीं बता रहे हैं, ये कारण है लोगों के अज्ञान का। एक अज्ञानी होते हैं और मतलब एक मूर्ख अज्ञानी होते हैं, वो बुरे नहीं है, उनको पता नहीं है, उनको जानकारी देने से वो सुधर जाएंगे। एक बिल्कुल राक्षस होते हैं, वो सुधरने वाले नहीं है, वो केवल मारने के योग्य होते हैं। आतिताई होते हैं, वो मारने के योग्य होते हैं। आतिताई, छह प्रकार के आतिताई शास्त्र ने लिखा है, किसी की स्त्री को ले जाए, किसी के घर को आग लगाए, किसी का माल लूट ले, ये आतिताई है, ये वध के योग्य है शास्त्र का। लेकिन अज्ञानी ज्यादा है दुनिया में बेचारे। अज्ञानी का मतलब आप समझो, आप इसको ऐसे ले लो हम सब अज्ञानी है, स्कूल में नहीं जाए तो ज्ञान कहां से आएगा। इसका मतलब जैसे स्कूलों की जरूरत है ऐसे आध्यात्मिक इंस्टीट्यूट की जरूरत है। आज स्कूल चरित्र नहीं सिखा रहा है, ये समस्या है। आज की मॉडर्न एजुकेशन की सबसे बड़ी बड़ी विडंबना ये है कि उसमें चरित्र का नाम नहीं सिखाया जा रहा है। चरित्र है, मॉरलिटी 0% स्कूलों में एजुकेशन मॉरलिटी की है। और मॉरलिटी स्पिरिचुअलिटी के ऊपर आधारित होती है। आध्यात्मिकता के पात्र में चरित्र का निवास होता है, आध्यात्मिकता हीनता चरित्रहीनता का कारण है। पूरे विश्व में चरित्रहीनता का जो बोलबाला है उसका कारण आध्यात्मिक अभाव है, आध्यात्मिक शिक्षा का अभाव है, ये नहीं है कहीं भी। और हम समझते भी हैं लेकिन हम इसके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। थोड़ा हमको सीरियस होना पड़ेगा, ये काम हमको करना पड़ेगा। थोड़ा आगे पढ़ लीजिए।
किंतु अधिक बुद्धिमान व्यक्ति जिन्हें व्यास तथा नारद जैसे मुनियों का निर्देशन प्राप्त है जानते हैं कि भगवान का शाश्वत राज्य अधिक सुखी, अधिक विशाल तथा आनंद एवं ज्ञान से नित्य परिपूर्ण है।
इसका उदाहरण प्रभुपाद जी का भी देते हैं कि इस दुनिया में रहते हुए हमको जब अमेरिका का समाचार मिलता है कि अमेरिका में रहने का स्टैंडर्ड अच्छा है, रोड अच्छे हैं, घर अच्छे हैं, काम कम करना पड़ता है, पैसा ज्यादा मिलता है, 5 दिन काम करना पड़ता है, तो हमारे दिल कहे करती है कि अमेरिका जाएं। भैया हमारे को अभी अभी ये किसी को तो यूरोप अमेरिका का जब समाचार मिलता है टेलीविजन से अखबारों से तो वहां जाने की इच्छा होती है कि नहीं होती है? तो बोला ये हम आपको आध्यात्मिक जगत वो इससे ज्यादा है जहां मरना भी नहीं पड़ेगा, बूढ़ा होना भी नहीं पड़ेगा, तो वहां जाने के लिए आप लालायित क्यों नहीं है? जब इस दुनिया में कोई ऐसी बात बता रहे हैं जहां आपको जाने की इच्छा होती है तो वहां हम उसकी बात वहां की बता रहे हैं जहां तो सुविधाएं बेअंत हैं और जहां कभी आपको कष्ट होना ही नहीं है, तो वहां जाने के लिए मन में इच्छा क्यों नहीं उत्पन्न हो रही? कितना प्रयास करते हैं, कितना खर्चा करते हैं लोग अमेरिका की वीजा लगाने के लिए, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, खर्चा करते हैं कि अमेरिका जाएंगे और जाने के बाद माँ बाप के काम के भी नहीं रहते हैं, घर से भी लूट गए, छूट गए, किसी काम के नहीं है। माँ बेटा मेरा अमेरिका पढ़ रहा है, माँ देखा कभी 3 साल हो गए, 5 साल हो गए, कभी कभी फोन करता है, बड़ी खुश है मेरा बेटा स्टेट गया है और तुम्हारा स्टेट 0 है, अब कोई देखने वाला नहीं है, पड़ी है ओल्ड एज होम में। तो उस जाने वाले कोई भूल जाते हैं आस्ते आस्ते, अमेरिका जाने वाला अमेरिका का हो जाता है, वापस नहीं आता है, तो जो आध्यात्मिक जगत आ जाएगा वो वापस क्यों आएगा? वो उसको वापस आने की जरूरत क्या है, यहां से ही कोई नहीं लौटता है। तो ये लिखा है कि वहां जाके कोई वापस नहीं आता, कोई झूठ है क्या? जब यहां दुनिया में नहीं वापस आता तो वहां जाने वाला क्यों वापस आएगा? तो ये समाचार सुन के हमारे उनको इच्छा उत्पन्न होनी चाहिए वहां जाने की। और नाम किसका लिखा है? नारद का। वो वहां जाके आता है, वो जब जाए तब जा सकता है, तो उसका उदाहरण दिया है जो वहां जा सकता है।
बोलो। जो लोग भगवान के कार्यकलापों तथा उनके दिव्य धाम से परिचित नहीं है उन्हें वे अवतार लेकर के अपनी लीलाओं के माध्यम से अवगत कराते हैं।
ये मुख्य लाइन है इसकी कि इस दुनिया के हम लोग भगवान के उस धाम के बारे में नहीं जानते हैं, इसलिए भगवान कृपा करके इस धरती के ऊपर अवतार लेते हैं। और इसको ऐसे समझ लीजिए कि इस दुनिया में हमारे बंधन का कारण क्या है, निकुंज लीला क्या है हमारे बंधन का कारण इस दुनिया में? किसको, किस कौन सी चीज? क्या मेरा आपका क्या है ये तो बताओ। अरे ये पहले तो ये बोलो पद्म नाम मेरा है, तो उस बेचारे को छोड़ के घर को जाके बैठो, घर में छोड़ो ये मेरे को दे दो, ले जाता हूँ। गड़बड़ कर दी। इस दुनिया में हमारा बंधन का कारण मोह है, रिश्ते है, और रिश्ते कौन से? बेटा, बाप, माँ, भाई, बहन, मित्र, ये रिश्ते हैं जो हमारे बंधन का कारण है। इसी के लिए हमारे को घर, धन, धन और सब इन रिश्तों के लिए चाहिए ना। अब भगवान कहते बेचारे रिश्तों में बंध गए हैं, मैं ही जाता हूं और कहता हूं ये रिश्ते तुम मुझसे कर लो, मेरे को बेटा बना लो, मेरे मित्र बन जाओ। देखो मैं अर्जुन का मित्र बन गया, उसको मुश्किल से छोड़ा दिया कि नहीं छोड़ा दिया? वो सुग्रीव बांदर था, मेरा मित्र हो गया, तो उसका उद्धार किया कि नहीं किया? विभीषण राक्षस के घर में पैदा हुआ था, मेरा मित्र हुआ तो उसकी रक्षा की कि नहीं की? तो मेरे मित्र बन जाओ, मेरे को बच्चा बना दो। इसलिए देखो भारतवर्ष में गोपाल की पूजा कितने घरों में होती है, बेटा बना के रख दिया घर में ना, तो मुझे बेटा बना लो, वो प्रेमी बनाना है तो भी मुझे बना लो। तो ये सब रिश्ते जो इस दुनिया में हमारे बंधन के कारण है, ये सारे रिश्ते भगवान अवतार लेके कहता है मेरे साथ देखो करो, इधर भी हुए ना, मैंने अवतार लिया, देखो मेरे मित्र बने कि नहीं बने, कितने जो बने कितने सुखी हो गए, जो मेरे माता पिता बने, मेरे प्रेमी बने, मेरे सखा बने, ये सब ऐसे मेरे साथ आप ये संबंध मुझसे जोड़ लो तो बंधन से मुक्त हो जाओगे। वो मोह है और ये प्रेम है, प्रेम सुख देता है, मोह दुख देता है। तो भगवान के अवतार का कारण जो हमारे दुनिया में बंधन के कारण है उनसे हमें छुड़वाना है। पूरा कर लीजिए पढ़ के ये आज का।
ऐसे कार्यकलापों से भगवान भौतिक जगत के बद्ध जीवों को आकृष्ट कर लेते हैं। इन बद्ध जीवों में से कुछ भौतिक इंद्रियों के झूठे भोग में लीन रहते हैं और कुछ आध्यात्म जगत वैकुंठ के अपने वास्तविक जीवन को नकारते रहते हैं।
अब ये दो उन बातों के उन ए बेटा छोड़ दो, पानी कोई नहीं पिएगा, सर्दी का मौसम है। हरे कृष्ण। कौन 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 प्यासा है? आई निकुंज लीला को मोह नहीं है, निकुंज राधा को मोह है। या दिलीप को यहाँ बैठा हुआ वहां चला गया, लेकिन गया भगवान की तरफ है, उसकी तरफ नहीं गया है। हरे कृष्ण। तो ये दूसरी लाइन है कि इस दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं। एक तो है मंदिर में जाएंगे पूजा करके सुबह प्रणाम करके जाएंगे, लेकिन कमाएंगे खाएंगे घूमेंगे फिरेंगे। और दूसरे हैं कि थोड़ा थोड़ा विचार करते हैं भगवान कहाँ है, इस दुनिया में दुख है, भगवान को जानने का प्रयास करेंगे लेकिन मन के स्तर के ऊपर। तो इन दोनों को कहते हैं, एक है कर्मी दूसरे है ज्ञानी। ये ज्ञानी और कर्मी हो गए। और
कर्मी तथा ज्ञानी अर्थात शुष्क मनोधर्मी कहलाते हैं, किंतु इन दो प्रकार के व्यक्तियों के भी ऊपर आध्यात्मवादी होता है जो सात्वत या भक्त कहलाता है, और जो न तो उग्र भौतिक कार्यकलापों में न ही भौतिक चिंतन में लीन रहता है।
उग्र भौतिक कार्यकलाप क्या है? उग्र कहा है? कसाई खाना उग्र है, और क्या ज्यादा और क्या उग्र होगा? ये बड़े बड़े फैक्ट्रियां जिसके अंदर आदमी जाएगा तो कान भी बंद करके जाना पड़ता है, भूत जैसे कपड़े पहन के जाना पड़ता है। देखा है ना, भूत बन के जाना पड़ता है अंदर, कोई आदमी बन के थोड़ी जा सकता है। तो उग्र कर्म है, ये उग्र कर्म है। और सरल कर्म कौन सा है? खेती करना। 3 महीने खेती करो, 12 महीने खाओ। पुराने जमाने के हमारे आदमी सिर्फ बरसात में 3 महीना काम करते थे, 9 महीना बैठ के कथा सुनते थे, कोई काम नहीं था। कभी हरिद्वार चलो, कहीं कोई घर में 12 महीने का अनाज होता था, कोई चिंता नहीं होती थी, घर का दूध गाय का होता था। 3 महीना काम, 9 महीना छुट्टी। बहुत सरल सा एक साधन बना हुआ था। अभी 12 महीना कम पड़ता है, भगवान को एप्लीकेशन कही हुई कुछ महीने बढ़ाओ। टाइम कम पड़ रहा है, कुछ घड़ी में 25 घंटे हो तो अच्छा है। लोगों का ये हाल हो गया है, बड़ी समस्या हो गई है। क्यों जी काबरा जी? पहले 3 महीने गांव में देखा था, लोग कुछ नहीं करने को था, आज कथा है यहाँ, आज फला वहां चलते हैं, महीना महीना पैदल चले जाते थे बद्रीनाथ। अब पैदल तो हम यहाँ से नीचे भी नहीं उतरेंगे, लिफ्ट होगी तो जाएंगे। हमारा हाल कैसा हुआ है। हरे कृष्णा। दो लाइनें पढ़िए, आय समाप्ति की ओर जा रही
है। तो भगवान की वास्तविक सेवा में तत्पर रहता है जिससे उसे सर्वोच्च आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है।
तो भगवान की वास्तविक सेवा क्यों लिखा है? मंदिर तो सारे हैं, लेकिन पुजारी से लेकर अंदर जाने वाले सब भगवान से लेने के लिए जाते हैं, भगवान को देने एक भी नहीं जाता। वास्तविक शब्द का अर्थ है कि मंदिर भी बहुत हैं, जाने वाले भी बहुत हैं, लेकिन भगवान से लेने जाता है, देने कोई नहीं जाता है। वास्तविक वो है जो भगवान को देने जाता है अपने आप को, कि मैं तेरा हूं। वास्तविक ये हुआ। किसने हमसे पूछा था कि इतने सारे मंदिर हैं, इतने सारे कथाएं हो रही हैं, लेकिन लोगों के चरित्र में तो पैसे का भी फर्क नहीं आया। ये सत्य है कि नहीं? आज से 50 साल पहले इतने ज्यादा मंदिर नहीं थे, इतनी बड़ी कथाएं लाखों लोगों वाली नहीं होती थी, लेकिन लोग ज्यादा ईमानदार थे, लोग ज्यादा एक दूसरे का सहयोग करते थे। अब जितना मंदिर बड़े हैं, जितनी कथाएं बड़ी हैं, उससे ज्यादा लोगों के अंदर लोभ लालच बढ़ा है, बेईमानी बढ़ी है। ये सच है कि झूठ है? इस क्यों कारण क्या है इसका? वास्तविक नहीं है। सबसे अच्छा बिजनेस आजकल, पाकिस्तान से जब मैं आ रहा था यहां माइग्रेट होके, तो जो वो पैसा यहां ट्रांसफर करते हैं ना, जो हुंडी का काम करते हैं हवाले वाले, वो बैठा था, कोई उससे पूछ रहा था कि अब इंडिया जा रहा हूं क्या काम करूं। उसने बोला दो काम है, या शराब का दुकान खोलना या मंदिर खोलना। मैं सुना था उसने कहा दोनों जगह मूर्ख लोग आते हैं। मुझे आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने ये कहा और मैंने सुना, क्योंकि वास्तविक है नहीं, दिखावा है और लेने के लिए जाते हैं। इसको बोला कुत्ता देके हाथी मांगना मंदिर में, 100 रुपया लो और 1,00,000 रुपये का चेक आना चाहिए। भगवान मेरा बच्चा मेडिकल में सिलेक्ट होगा तो 100 रुपये का भोग चढ़ाऊंगा और मास्टर को 5,000 ट्यूशन दूंगा, लेकिन आपको 100 रुपया ही दूंगा। वो भी पास हुआ तो नहीं तो ये भी पोस्ट डेटेड चेक है। और फिर कहेंगे आप क्या भगवान आपको क्या जरूरत है। तो वास्तविक शब्द एक के अंदर बहुत बड़ा रहस्य है कि ये सब हो रहा है लेकिन वास्तविक नहीं है। वास्तविक का मतलब है अपने आप को भगवान को अर्पण करने जाना कि मैं तेरा हूं, जो काम कर रहा हूं वो तेरा है, बस इतनी कॉन्शियसनेस को चेंज करनी है और कुछ नहीं छोड़ना है, इसको भावना को परिवर्तित करना है। तो मंदिर बहुत है, रोज नए बन रहे हैं। और वैष्णो देवी में एक दिन मैं खड़ा था तो कोई टाइम नहीं मिला उसको दर्शन का, मेरे को बोला ये आप डाल देना डब्बे में। तो ऐसे मेरे को जिज्ञासा हुई है कि अंदर चिट्ठी थी कि मैं माँ मेरा ये करना, माँ मेरा ये करना। मैंने बोला मैं माँ को परेशान नहीं करता हूँ, तेरी चिट्ठी बाहर पड़ी रहने दो। इतनी बड़ी लंबी लिस्ट हमें, मैं जाऊं दर्शन करने और माँ तेरे काम करने जाए तो मेरा तो आना ही बेकार हो गया। ये हरे कृष्णा। तो वास्तविक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है, वास्तविक एक शब्द है लेकिन बहुत बड़ा इसमें रहस्य है। वास्तविक पूजा जिसे आप घर में कर रहे हैं ये वास्तविक पूजा है कि आपको यहां से कुछ लेना नहीं है या देना ही है, ये वास्तविक। इसलिए कलयुग के अंदर घर घर में मंदिर होना एक ही वास्तविक पूजा का साधन है ना। आप रोज मंदिर नहीं जा पाएंगे, एक तो दूरी भी है और एक वास्तविकता कम होती जा रही है मंदिरों में। इसलिए अपने घर में अपना ही मंदिर बना लो और परिवार वाले बैठ के पूजा करो, ये बहुत सरल तरीका है, बहुत सरल तरीका, और कलयुग में यही है। अभी तो फिर भी हम आज छुट्टी है इसलिए इतने लोग अभी तक बैठे हैं, नहीं तो कहां बैठ सकते। लेकिन अपने घर में तो भोजन करना ही है ना, तब तो बैठ जाएंगे ना, मंदिर होगा, भगवान के सामने बैठे आधा घंटा कीर्तन किया बैठ लिए तो संभव है। तो कलयुग में ये आवश्यकता है कि अपने अपने घर में ही मंदिर बना दो तो वास्तविक पूजा हो जाएगी। उसमें कुछ न कुछ तो अपना है तो वास्तविक तो हो ही जाएगी ना थोड़ी बहुत। चलिए आगे थोड़ा समाप्ति की ओर।
घर को भगवान की वास्तविक सेवा में तत्पर रहता है जिससे उसे सर्वोच्च आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है जो कर्मियों तथा ज्ञानियों के लिए दुर्लभ है। भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों के परम नियंता के रूप में भगवान के असीम श्रेणियों के विविध अवतार होते हैं। ब्रह्मा, रुद्र, मनु, पृथु तथा व्यास जैसे अवतार तो उनके भौतिक गुणात्मक अवतार है, लेकिन राम, नृसिंह, वराह तथा वामन जैसे अवतार दिव्य अवतार कहलाते हैं। भगवान श्री कृष्ण इन समस्त अवतारों के उत्स हैं, समस्त कारणों के कारण।
तो यहाँ इस श्लोक का भावार्थ समाप्त होता है। तो भगवान के अवतारों की कथा सुनने से हमारी भगवान में आसक्ति होगी, सिनेमा से मतलब इस भौतिक जगत जो उसका लुभावना एक थोड़ा सा रंग है इससे विरक्ति होगी और असली भगवान के धाम में आसक्ति होगी कथा के द्वारा। लेकिन वो कथा सनातन गोस्वामी की भाषा में दूध अच्छा है, पौष्टिक है, लेकिन उसके अंदर विष मिला हुआ हो तो मार देगा। ऐसे भगवत कथा भगवान के भक्तों के मुख से सुनने से हमारे हृदय को शुद्ध करेगी और भगवान को उसमें विराजमान करने का साधन बनेगी। और वही कथा उस दूध की तरह जिस व्यक्ति का भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है, अपने आर्थिक आजीविका के लिए कथा कर रहा है वो बुद्धिजीवी बुद्धिजीवी है, मतलब जीविका के लिए बुद्धि का उपयोग अगर कर रहा है तो वो कथा आपको भी बुद्धिजीवी ही बनाएगी, भगवत भक्त नहीं बनाएगी। बहुत अंतर। प्रभुपाद जी ने एक दिन कहा था कि इतना सारा भगवान ने मुझे भक्त भी दिए हैं और सुविधाएं भी दी हैं, इसका एक ही कारण है कि जो कुछ भी भगवान की कृपा से मुझे मिला मैंने उसमें से एक कोड़ी भी अपने इंद्र तृप्ति के लिए नहीं उपभोग किया है। इसलिए भगवान ये सब दे रहा है क्योंकि वो मैं अपने इंद्रिय भोग के लिए नहीं भगवान की सेवा में लगा रहा हूं, इसलिए भगवान ये सब दे रहा है। तो ऐसे शुद्ध भक्त के माध्यम से अगर हरि कथा सुनी जाएगी तो जीवन में परिवर्तन आएगा। नहीं तो जो स्वयं ही पैसा लेने के लिए कथा कर रहा है तो आपको ही पैसा कमाने के लिए प्रेरित करेगा और क्या करेगा। मेरा सीधी सीधा सा है ना, तो बहुत सरल इसका उत्तर है। शांति का यज्ञ करने के लिए पंडित जी को यज्ञ के लिए बुलाया, शांति शांति किया, दक्षिणा कम मिली तो खुद ही झगड़ा करने लगा। पंडित अशांत तो हमारे घर में शांति कहां से आएगी। तो ये सब वास्तविक नहीं है। अब किसी का कोई प्रश्न है इसको यहाँ आज विराम देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? हो गया आज 10 मिनट पहले से ज्यादा हो गए टाइम में।
आज तो छुट्टी है ना जी।